परमात्मा और गुरुजनों की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं। कृष्णायजुर्वेदीय कठोपनिषद की द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली के ऊपर परमात्मा का साक्षात्कार स्थिर निश्चल और सूक्ष्म बुद्धि से होता है। तो कौन सा प्रतिबंधक के कारण बुद्धि में स्थिरता, एकाग्रता, सूक्ष्मता नहीं हो पा रही है? तो प्रतिबंधक को जाने बिना दूर करने के लिए प्रयत्न साधक नहीं कर सकता है। चोर को पहचानेंगे तब तो चोर को भगा सकते हैं। इसलिए साधक का साधकत्व यह है, यह जो प्रतिबंधक हो रहा है, साधक के जीवन में समस्याएं आ रही है, समस्या है कहां, बाहर है कि अंदर है, इसका पता लगाता है साधक। तो साधक विचार करता है कि समस्या अंदर है, बाहर नहीं है। तो जहां पर समस्या है तो समस्या का समाधान भी वहां पर होगा। तो समस्या अंदर होने के कारण समस्या का समाधान भी अंदर होगा। अंदर यदि अपना ज्ञान गलत है तो गलत ज्ञान निमित्त से बाह्य पदार्थ दुख का हेतु, चित्त में होने वाला विक्षेप का हेतु बनता है। अंदर का ज्ञान गलत है तो बाह्य एक छोटा सा शब्द भी साधक के चित्त को विक्षेप करता है। तो बाह्य वस्तु गलत ज्ञान के निमित्त से विक्षेप का हेतु होता है, इसलिए गलत ज्ञान को दूर करने के लिए साधक प्रयत्न करता है। तो अंतर्मुखी हुए बिना समस्या का समाधान नहीं होता है। अंतर्मुखी होने पर समस्या का ज्ञान भी होगा, समस्या का समाधान भी होगा, चित्त एकाग्र भी होगा और मूला ज्ञान भी दिखाई देगा जो मुख्य प्रतिबंधक है। कल हमने विचार किया प्रतिबंधक दो प्रकार के हैं, एक अनादि है, दूसरा सादि आगंतुक। तो मूला विद्या जो है, जिसने आवृत कर दिया स्वरूप को, जिससे कि सामान्य रूप से अनुभूति होती है, विशेष रूप से अनुभूति नहीं होती है। सामान्य रूप से अनुभूति होने के कारण आत्मा में परम प्रीति होती है, और विशेष रूप से भान ना होने के कारण बाह्य अनुकूल वस्तु में स्प्रिया प्रीति हो जाती है। ये हो गया मुख्य अनादि प्रतिबंधक। अनादि प्रतिबंधक जो मूला विद्या है उसकी विक्षेप शक्ति को लेकर के आगंतुक प्रतिबंधक अनेक प्रकार के हो जाते हैं, जिससे चित्त में बुद्धि में एकाग्रता और सूक्ष्मता अंतर्मुखता नहीं हो पाती है। तो व्यक्ति जब अंतर्मुखी हो जाता है तो अपना दोष भी दिखाई देगा, आगंतुक और अनादि जो अविद्या दोष वो भी दिखाई देगी, और दोनों का जो अधिष्ठान परमात्मा है मूला विद्या और अविद्या का कार्य, सबका अधिष्ठान परमात्मा है। परमात्मा का भी साक्षात्कार होगा मूला विद्या के निवृत्ति पूर्वक, कार्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यहां पर कहते हैं तो अंतर्मुखता होने में जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को दूर करने के लिए प्रथम मंत्र में समाधान बताते हैं, साधन। तो परांचिखाने व्यतण स्वयंभुस तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन। कि परमात्मा ने समस्त इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। ये इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है यही उसका अनादर है, हिंसा है। तो फिर क्या करना चाहिए साधक को? तो श्रुति कहती है कश्चित् धीरः, धीर होना होगा। धीर बने बिना परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान की योग्यता नहीं आ सकती है। और परमात्मा का साक्षात्कार केवल ध्यान अवस्था में करना हो ऐसा नहीं, वेदांत का भजन प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक परिस्थिति में करना है। इसलिए व्यवहार दशा में जब परमात्मा का भजन करना है तो बहुत धैर्य की आवश्यकता है। इसलिए श्रुति बोलती है धीरः। तो धीर होना मतलब क्या? विवेकी होना। तो विवेक करना चाहिए। किसका विवेक? कल हम लोगों ने उपक्रम किया दृष्टा और दृश्य का विवेक, दृग्दृश्य विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक। आत्मा हमेशा दृष्टा ही रहता है, अपना दृष्टित्व कभी भी व्यभिचरित नहीं होता है, चाहे जागृत में हो, चाहे सपनों में हो, चाहे सुषुप्ति में हो। ये जो अंदर की यात्रा हो रही है, ये अंदर की यात्रा के लिए तैयारी चल रही है। जैसे किसी लक्ष्य पर जाना हो तो तैयारी करनी होती है। इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात करना हो तो अंदर की यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा नहीं। बाहर की यात्रा अनादि काल से हो रही है, उससे परमानंद की प्राप्ति हुई नहीं अभी तक। तो अंदर की यात्रा यदि करनी हो तो अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। ऐसा नहीं कि प्रतिकूलता ही आएगी, अनुकूलता भी आएगी। आप अनुकूल परिस्थिति को भी देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति को भी देखिए। आप यदि अपने स्वभाव से नीचे आया, दृश्य के साथ मिल गए आप, तब तो आप धीर नहीं बन सकते, अधीर बन जाएंगे। आप प्रवचन कर रहे हैं, आप अपने स्वरूप में रहिए भाई, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना बढ़िया बोलने जा रहे हैं हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। जो समझता है उनको भी आप देखिए, जो नहीं समझता है उनको भी आप देखिए, जो आंख खुल करके इधर देख रहा है उनको भी देखिए, जो सो रहा है उनको भी देखिए। आप फिर अपने स्वरूप में रहिए, अपने आप स्वरूप को क्यों छोड़ दें भाई, हमारी बात सब सुने ये कोई जरूरी नहीं है। आप यदि अपने शरीर के साथ अध्यात्म कर लेंगे, जैसे घटपटादि दिखाई देता है दृश्य, इस प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां भी दिखाई देता है, और मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जब तक आप एकीभूत नहीं होते हैं, तादात्म नहीं कर लेते हैं, संसर्ग अध्यास नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कर्ता नहीं बन सकते। रूप दर्शन का कर्ता, रस दर्शन का कर्ता आत्मा तब बनता है जब मन बुद्धि इंद्रियों के साथ एक हो जाता है, गठबंधन कर लेता है। इसलिए कर्तृत्व जो आता है न आत्मा में आता है न अनात्मा में आता है। स्वरूप आत्मा कभी भी कर्ता नहीं हो सकता है। आप अपने अनुभव में करके देखिए, चक्षु से रूप दिखाई देता है तो रूप का कर्ता बन जाते हैं आप, रूप दर्शन का। जब तक आप मन के साथ एकीभूत नहीं होते हैं, चक्षु के साथ एकीभूत नहीं होते हैं, तब तक आप रूप का दृष्टा नहीं बन सकते। जैसे श्रुति कहती है सर्व कामो जजेत, श्रुति कहती है सर्व कामो जजेत, तो सर्ग का जाग करने वाला सर्ग की प्राप्ति के लिए जाग करता है, तो जाग का कर्ता कौन है? शुद्ध आत्मा है कि शरीर है कि दोनों को मिला करके है? किसको उपदेश किया जाता है? स्वरूप आत्मा को उपदेश किया जाता है कि तुम जाग करो, यजमान हो। तो यजमान कौन है फिर? आत्मा है कि शरीर है? दोनों है ना भैया? शरीर भी नहीं है, शरीर तो पड़ा रहता है। शरीर जब पड़ा रहता है प्राण छोड़ने के बाद, वो जाग का कर्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर जाग का कर्ता दोनों है मिला करके है। शरीर में जो अहम बुद्धि करता है उसी का नाम जीवात्मा है, पंचदशी में आएगा। चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः चित छाया लिंग देहस्ता तसंगो जीव उच्यते, है ना? तो मन जिसमें कल्पित है और उस मन में जो आभास है वो भी उसी में कल्पित है। आप विचार करके देख लो, चलचित्र का पर्दा हो और उसमें एक वृक्ष दिखाई देता हो और उस वृक्ष में अच्छे अच्छे फूल है, अच्छे अच्छे पुष्प है, ये फल है, पत्र है, तो पुष्प पत्र फल का आधार कौन है? वृक्ष है कि पर्दा है? भले ही आपको दिखाई देता हो वृक्ष, लेकिन वृक्ष आधार नहीं होता है, पर्दा आधार है, अधिष्ठान है। तो जो ही पर्दा मन को सत्ता देता है, वही पर्दा पत्र आदि को भी देता है। तो मन एक कल्पित पदार्थ है, तो मन कल्पित होने से मन में आभास होता है, चिदाभास। तो जैसे पत्र पुष्प आदि पर्दे को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार वृक्ष भी नहीं छोड़ सकता है। तो इसी प्रकार से मन जिस आत्मा को नहीं छोड़ सकता है अधिष्ठान, मन में रहने वाला जो आभास है वो भी आत्मा को, बिंब को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए तीनों को मिलाकर के जीवात्मा होता है। परमाया मन, मन में होने वाला चिदाभास, दोनों का अधिष्ठान, जिसको कुटस्थ कहते हैं अथवा बिंब कहिए, शुद्ध आत्मा कहिए। तो ना केवल शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व है, ना केवल मन रूपी उपाधि, शरीर रूपी उपाधि में कर्तृत्व है। जब तक आप शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कर्ता नहीं बन सकते। आप यदि कर्ता बन गए, आप चाहो या ना चाहो भोक्ता बन जाएंगे। स्वप्न में जिस शरीर के साथ आपका तादात्म्य हो रहा है, तादात्म्य यदि हो गया, आप चाहो या ना चाहो तो शरीर का धर्म अपने में आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से व्यवहार करते समय आप अपने स्वरूप को ना भूलें, साक्षी भाव को आप ना भूलें। जैसे घट पटादी दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार ये जो अपनी उपाधि शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये भी दिखाई दे रहे हैं, आप सबसे अलग होकर के रहिए, आपको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। संसार का कोई भी पदार्थ आपके लिए विक्षेप केतु नहीं बन सकते, इसको नहीं भूलना है। इसलिए व्यवहार दशा में परमात्मा का भजन करना है, तो व्यवहार दशा में आपको धीर बनकर रहना होगा। इसलिए कहते हैं धीर हो, और श्रुति कहती है कश्चित कश्चित। धीर संसार में सब नहीं बन सकते, जैसे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कहते हैं ना गीता में, उसी प्रकार से यहां पर श्रुति कहती है संसार में अधिकतर इस संसार के प्रभाव में बहने वाले दिखाई देंगे, दृश्य के साथ मिल करके काम करने वाले दिखाई देंगे। मैं केवल दृष्टा हूं, दृश्य से भिन्न हूं, ये भाव रखने वाले कम दिखाई देंगे। इसलिए श्रुति कहती है कश्चित धीर, कोई कोई धीर होता है। और यहां पर ये भी समझ सकते हैं कश्चित शब्द से, धीर होने में जाति वर्ण आश्रम का भेद नहीं होता है, धीर तो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। कर्म में तो अधिकार अलग अलग होते हैं, सभी वर्णाश्रम के लोग एक कर्म को नहीं कर सकते, कर्म में भेद किया जाता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में भेद नहीं होता है। जैसे परमात्मा की भक्ति के लिए सबका अधिकार है, उसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान के लिए भी सबका अधिकार है। और ज्ञान की योग्यता जो धीरता है, इसमें भी सबका अधिकार है। इसलिए श्रुति कहती है कश्चित धीर, कोई कोई धीर होता है, और धीर कोई भी हो सकता है, वर्णाश्रम का कोई मतभेद नहीं होता है। तो एक बात तो हो गई, तो व्यवहार दशा में आप अपने दृष्टित्व भाव को ना भूलें, तब तो खाते समय, पीते समय, व्यापार करते समय, हर समय आप भगवान का भजन कर सकते हैं, कोई प्रतिबंधक नहीं आएगा। और जिस समय आप साधन अवस्था में बैठते हैं माला पकड़ करके अथवा समाधि में बैठते हैं, तो व्यवहार के समय तो आप चक्षु को खोलकर रखेंगे, व्यवहार को रोक नहीं सकते आप। तो व्यवहार करते समय भी परमात्मा का भजन करना है, इसलिए धीर बनना होगा। लेकिन जिस समय आप साधन अवस्था में बैठते हैं व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए व्यवहार अवस्था में जो इंद्रियां बाहर के फोटो को खींच करके रखा है, कहां पर रखा है? मन में। जैसे फोटो को खींच करके एल्बम में रखते हैं ना, है ना? इसी प्रकार व्यवहार दशा में इंद्रियां ये बाहर की फोटो को खींच करके मन में रखती है ना? और साधन अवस्था में यदि आप बाहर की फोटो खींचते रहेंगे तो परमात्मा का ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान करना है किसका? व्यवहार दशा में अपने आप को जो आप दृष्टा समझ रहे हैं, उस दृष्टा के स्वरूप का दर्शन करना है ध्यान अवस्था में। दोनों में अंतर है ना? व्यवहार दशा में इतना ही समझना है कि मैं सबका साक्षी हूं, सबसे अलग हूं। और ध्यान समाधि अवस्था में दृष्टा का जो स्वरूप है सच्चित आनंद, उसका दर्शन करना है। और उसका दर्शन इंद्रियों को रोके बिना नहीं होगा। इसलिए श्रुति कहती है दूसरा विशेषण आवृत्त चक्षुः। चक्षु केवल ये चक्षु इंद्रिय को नहीं है, उपलक्षण है, सभी इंद्रियों को रोकना है, बाहर नहीं जाने देना है। रोक दिया, जैसे कैमरे के शीशे के ऊपर कपड़ा ढक दिया, वो फोटो कहां से आएगी? इसी प्रकार अपने भी इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देना, ये हो गया आवृत चक्षु। अच्छा, इतना तो मान लिया, लेकिन आंख बंद करने पर भी तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो बाहर की फोटो को खींच करके रखा हुआ है मन में, है ना? तो मन की फिर रील चलेगी, फिर मन अपना काम करेगा, है ना? जैसे बच्चे लोग कैमरे पहले खींच लिए फिर जो मोबाइल में देखते रहते निकाल करके, है ना? इसी प्रकार मन निकालता रहेगा फोटो को, व्यवहार में क्या क्या हमने भोग किया है सबको निकाल कर देखता रहेगा। तो जीवात्मा मन के द्वारा यदि फोटो को देखता ही रहे, फिर जीवात्मा का दृष्टा का जो स्वरूप है उसका ज्ञान कैसे होगा, उसका भजन कैसे होगा? फिर क्या करना चाहिए? यदि चक्षुरादि इंद्रियों को बंद करने पर भी परमात्मा का भजन नहीं हो रहा है, संसार का भजन हो रहा है, समझ लो कि अभी संसार के प्रति इच्छा है, बाकी है, अवशिष्ट है। इसलिए क्या करना चाहिए? श्रुति कहती है अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को तीव्र करो। तो तीव्र जब इच्छा हो जाएगी मन बाहर नहीं दौड़ेगा और मन मनोराज्य नहीं करेगा, है ना? इसलिए व्यवहार दशा में क्या करना चाहिए? व्यवहार को आप रोक करके नहीं चल सकते संसार में। व्यवहार को रखेंगे, बंद करेंगे तो आप भिक्षा भी नहीं मिलेगी। महात्मा हो तो कौन देगा, है ना? महात्मा को भिक्षा नहीं मिले गृहस्थियों को कैसे मिलेगी? व्यवहार को रोक नहीं सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, तो वेदांत तो अनुभूति ना है, वेदांत अनुभव की चीज है। तो क्या करना चाहिए? जिस समय हम रूप का दर्शन कर रहे हैं चक्षु से, रस का दर्शन कर रहे हैं रस रसनेन्द्रिय से, ये जो भोग हो रहा है इसको तो रोक नहीं सकते आप। जिस समय भोग रहे हैं उस समय भावना होनी चाहिए, भावना है औषधि। जैसे मान लो डायबिटीज की बीमारी हो तो खाने से पहले क्या दवाई लेते हैं कि नहीं? दवाई लेते हैं, तो इंजेक्शन भी लेते हैं। वो दवाई क्या करती है, भोजन से होने वाला जो डायबिटीज शुगर उसको काट देती है, शुगर होना नहीं देगी, है ना। इसी प्रकार भोग करते समय चाहे रसगुल्ला खाओ चाहे सूखा चावल रोटी खाओ, सभी में एक ही बुद्धि होनी चाहिए, अन्न है, बस अन्न है, खाने की चीज है। महात्मा भिक्षा कर रहा है अन्न क्षेत्र से, चाहे भंडारे का भोजन हो चाहे बिना भंडारे का भोजन हो, चाहे रोटी में घी लगा हुआ हो चाहे घी ना लगा हो, अन्न है। अब करके देखिए इसको, खाने की चीज है, बस खाने की चीज है, सभी में अन्न तो एक ही है। जैसे व्यवहार में चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, ये अलग अलग है, लेकिन मनुष्य तो एक है कि अलग अलग है, एक ही है, हो गया ना भाई। इसी प्रकार से खाने की चीज कैसी भी हो सात्विक है तो अन्न, तो सभी में यदि अन्नत्व बुद्धि हो, बस खाने की चीज है ये भी, खाने की चीज, शरीर निर्वाह के लिए खाने की चीज है, भोग के लिए नहीं है, हो गया ना। तो इस भावना होने पर शोभन बुद्धि नहीं होगी, ऐसा समझ में ना भाई, शोभन बुद्धि नहीं होगी। और भावना यदि आपने नहीं किया, इस मंत्र का प्रयोग यदि नहीं किया, किस मंत्र का, भैया खाने की चीज है बस, कपड़ा पहनने की चीज है बस, चाहे टेरी कटन हो चाहे सूती हो कोई भी हो, पहनने की चीज है ना। तो इस भावना यदि नहीं किया आपने तो अनुकूल वस्तु में शोभन बुद्धि हो जाएगी, भाई क्या बढ़िया चीज है, हमने तो कभी खाया नहीं था ऐसा, भावना नहीं करेंगे तो ये शोभन बुद्धि होगी, हो गया ना भाई, शोभन बुद्धि होगी। अनुकूल वस्तु हो तो शोभन बुद्धि होगी, प्रतिकूल वस्तु हो तो अशोभन बुद्धि होगी, है ना। ये शोभन बुद्धि और जो अशोभन बुद्धि हो रही है भावना न करने के कारण, मंत्र का प्रयोग न करने के कारण, वो शोभन बुद्धि क्या कर देगी, रागात्मक संस्कार पैदा करेगी, हो गया ना भाई। और अशोभन बुद्धि हो तो द्वेषात्मक संस्कार पैदा करेगी। ये जो रागात्मक संस्कार हो रहा है, द्वेषात्मक संस्कार हो रहा है, ये संस्कार स्मरण कराएगा, इंद्रियों को रोकने पर भी मन अपना मनोराज्य करेगा। आप भजन करके बैठ गए, आप कभी मान लो कि आपको 10 साल पहले कोई गाली दिया हो, उसका संस्कार आ जाएगा। अब भजन करने के लिए बैठ गए और याद आ गई, देखो हमने, मैंने कुछ कहा नहीं था, ऐसे ही हमको गाली दे दिया। अब भजन करते समय भी आप क्रोधित हो जाएंगे, कभी कभी देखो बड़बड़ाना भी लगता है, मुख से वाणी भी निकल जाएगी। तो ये जो भावना आपको बताई मंत्र रूप से, इसका प्रयोग सर्वत्र करना चाहिए। जैसे गुरु मंत्र देता है, भी मंत्र केवल कि सुबह 5 मिनट जप लेना और शाम को 5 मिनट जप, इसीलिए नहीं है मंत्र। मंत्र का प्रयोग तो 24 घंटे करने के लिए है। ये माला तो देते हैं, ये तो केवल अभ्यास के लिए है। धीरे धीरे ये 24 घंटा मंत्र का जप हो जावे, भाई तुम ये मंत्र ले लो, 24 घंटा इसका प्रयोग करो, तब तो ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा संसार से। इसी प्रकार ये सब खाने की चीज है, मान लो भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, कोई भी नाम हो, मान लीजिए कोई मधुर स्वर वाला व्यक्ति ने कहा राम का नाम, और कर्कश स्वर वाला कोई राम का नाम है, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो मधुर स्वर से उच्चरित राम और कर्कश स्वर से उच्चरित राम में कोई अंतर नहीं है, ना भगवान का राम में नाम में अंतर है, ना नामी में अंतर है, दोनों में अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर समझता हो, समझना चाहिए कि भक्ति की कमी है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। ऐसा जो मैंने जैसे रामायण की कथा हो, कथा करने वाला कैसा भी हो, तो सबकी कथा में हनुमान जी महाराज आते कि नहीं? भेदभाव नहीं करते, इसको कथा करना नहीं आता है और इसको कथा करना आता है। इसी प्रकार भजन कोई भी गाता हो, सभी में भगवान का भजन सुन करके आपका हृदय यदि गदगद नहीं होता हो, कोई भी हो, समझना चाहिए कि हम भक्त नहीं है भगवान के, है ना? वेदांत का वेदांत की चर्चा कहीं भी होती हो, अपने बड़े महाराज जी थे साधना सदन में, तो वेदांत का पाठ कोई भी चलाता हो, चाहे बड़ा विद्वान हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, सबके पाठ में आकर बैठते थे। कोई मान लीजिए थोड़ी सी गलती हो गई, बोलते थे जरूर, लेकिन ये भेदभाव नहीं करते भाई इसको वेदांत का पाठ पढ़ाना आता है इसको नहीं आता, ऐसा नहीं। वेदांत वेदांत ही है ना? इसी में अगर सभी शब्द में, चाहे आपकी कोई स्तुति करता हो चाहे आपकी कोई निंदा करता हो, तो स्तुति परक शब्द और निंदा परक शब्द में कोई अंतर नहीं है। शब्द तो शब्द है, तो कंठ तालु अभिघात के भेद से शब्द अलग अलग हो जाता है, है ना? शब्द तो एक ही है, एक ही शब्द शंख से निकलता तो शब्द अलग हो जाता है, मालूम पड़ता है, अब मृदंग से निकला तो शब्द अलग मालूम पड़ता है, लेकिन दोनों में शब्दत्व में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार यदि आपने भावना किया, चाहे स्तुति परक शब्द हो चाहे निंदा परक शब्द हो, शब्द तो शब्द ही है, इस प्रकार यदि भावना करेंगे तो विक्षेप नहीं होगा। देखो ना, स्तुति परक शब्द में श्रवण बुद्धि होगी, ना निंदा परक शब्द में अश्रवण बुद्धि, और स्तुति करने वाले व्यक्ति में ना राग होगा ना निंदा करने वाले व्यक्ति में द्वेष होगा। यदि ऐसी भावना आपने यदि नहीं किया तो रागात्मक संस्कार द्वेषात्मक संस्कार होकर के इंद्रियों को बंद करने पर भी जिससे में आप भजन करने के लिए बैठ जाएंगे वो संस्कार स्मरण करा देगा, भजन नहीं हो सकता है। तो इस भावना यदि किया हो तब तो मनोराज्य नहीं हो सकता है, है ना? तो भावना के साथ साथ संसार का कोई भी पदार्थ हमको वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं करा सकता है, इसलिए क्या करें? भावना के साथ साथ अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को आप तीव्र करिए तो मनोराज्य नहीं होगा। देखो मनोराज्य नहीं भी हुआ, मान लो कभी कभी झपका लग जाएगा, निद्रा आ जाएगी, आएगी कि नहीं? विचार किए थे मांडुक्य में, मन जरूर किसी ना किसी को आलंबन करता है, मन आलंबन किए बिना नहीं रह सकता है, चाहे बाह्य पदार्थ हो चाहे आभ्यंतर पदार्थ हो मनोराज्य, चाहे निद्रा हो, तीन हो गए, देखो तीन हो गए ना। बाहर दशा में मन बाहर चला जाता है, और आंख बंद कर दिया तो मन में जो फोटो है ना वो फोटो को निकालता रहेगा वो, तो संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा स्मरण होता रहेगा मनोराज्य, हो गया ना, दो हो गए। और यदि अमृतत्व की इच्छा तीव्र नहीं है, है ना, वैराग्य के द्वारा आपने तो भाई संसार के प्रति मन को रोक दिया भावना के द्वारा, हो गया ना। लेकिन अमृतत्व की इच्छा यदि तीव्र ना हो तो मन निद्रा में जा सकता है। आप देखते हैं, देखो वेदांत में रुचि यदि नहीं हो ना, आपका शरीर भी स्वस्थ है, अनुभव करके देखिए, शरीर भी स्वस्थ है, निद्रा भी पूरी हो रही है, ठीक से आपने सोया भी है घर में रात में, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, जब पुस्तक खोलेंगे तो नींद आ जाती है, इसका क्या हेतु है? इच्छा नहीं है, वेदांत के प्रति श्रवण के प्रति इच्छा नहीं है। इसी प्रकार से इंद्रियों को रोकने पर भी, मनोराज्य न होने पर भी, यदि भजन में यदि रुचि ना हो तो मन कहाँ जाएगा? निद्रा में जाएगा कि नहीं, देखो, है ना। इस अमृतत्व की यदि तीव्र इच्छा हो, है ना, मनोराज्य भी नहीं होगा, निद्रा में भी मन नहीं जाएगा, अब कहाँ जाएगा? तीनों तब रोक दिया ना, फिर चार रास्ता है मान लीजिए, तीनों रास्ता को रोक दिया और कहाँ जाएगा मन? अपने घर में ही जाएगा वो, इसलिए हट पूर्वक मन को आप रोक नहीं सकते, है ना, युक्ति से के युक्ति से, है ना। इसलिए उपाय निगृहयात विक्षिप्तम काम भवयोः, मांडव्य में कहते हैं कि उपाय के द्वारा, तरकीब के द्वारा मन को आप संयमित कर सकते हैं। तीन मार्ग को यदि आपने रोक दिया तो एक ही मार्ग शेष रह गया, कौन है? अपना घर, परमात्मा। परमात्मा को ही जरूर मन विषय करेगा, और कहाँ जाएगा वो? मन कभी भी निरालंबन नहीं होता है, जरूर किसी ना किसी को आलंबन करेगा, इसलिए परमात्मा को ही आलंबन करेगा। इसलिए क्या करें कि अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को तीव्र करो। व्यवहार के समय ये भावना रखो कि संसार में कोई भी पदार्थ क्षणिक सुख को तो प्राप्त करा सकता है, लेकिन शाश्वत जो सुख है परमानंद, उसको प्राप्त नहीं करा सकता है। उपनिषद में कथा आती है ना, बृहदारण्यक में, याज्ञवल्क्य जो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे शरीर से, तो भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को गुरु बना करके ज्ञान को प्राप्त किया, वैदिक ज्ञान को। और जब संन्यास लेने का समय आया, उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी कात्यायनी, दो पत्नियों को बुलाया, पत्नी की भी आज्ञा लेनी चाहिए संन्यास के लिए, ये नियम होता है, हाँ नियम है, बिना आज्ञा से पति नहीं जा सकता है भाई, अर्धांगिनी है, है ना, पत्नी क्या है? अर्धांगिनी। तो विवाहिता जो अपनी स्त्री है उसको पत्नी कहते हैं, पत्नी क्यों कहते हैं? यज्ञ संबंधी होने से पत्नी, पत्रनो यज्ञ संबंधी, ये सूत्र होता है, हाँ, पाणिनि सूत्र। जो पति के साथ यज्ञ में जो सहभागी है उसी का नाम पत्नी है। तो जाग करते हैं, किसको ज्यादा फल मिलेगा जी? पति को ज्यादा मिलेगा कि पत्नी को? दोनों को समान है ना, भले ही पत्नी पूजा करे पति की, है ना, लेकिन फल दोनों को समान मिलता है, है ना। इसलिए पत्रनो यज्ञ संयोगे, पति के साथ यज्ञ का संबंधी होने के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को पत्नी कहते हैं, है ना। इसलिए पत्नी की आज्ञा लेनी चाहिए। तो इसलिए दोनों को बुलाया, देखो हम संन्यास लेने जा रहे हैं, उनके पास बहुत संपत्ति थी याज्ञवल्क्य के साथ पास, दोनों को बुलाया, देखो आगे क्या होगा पता नहीं, है ना, संपत्ति विपत्ति का मूल है, संपत्ति बहुत हो तो झगड़ा स्वाभाविक है, प्रायशः झगड़ा होती है। जब दोनों को बुला लिया, मैत्रेय कात्यायन को एक भाग दे दिया, कात्यायन ने कुछ नहीं कहा, वे ठीक है जो हो रहा है ठीक है, लेकिन मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी, है ना? ऐसा बोलते हैं महात्मा लोग। तो सबसे पहले मैत्रेयी थी, उनकी बड़ी पत्नी है, बड़ी पत्नी है, वो तो शास्त्रार्थ में साथ साथ जाती थी, के लिए विदुषी थी वो भी, लेकिन बाकी कार्य करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बहुत आग्रह किया मैत्रेयी ने, भाई आपकी सेवा करने वाली कोई है ही नहीं, बहुत अब आग्रह किया, फिर दूसरी पत्नी से विवाह किया, तो उसका नाम है कात्यायन। तो कात्यायन तो भाई आश्रम की व्यवस्था देखती थी, है ना, व्यवस्था संभालती थी, व्यवस्थापिका थी वो, इसलिए शास्त्र में ज्यादा रुचि नहीं थी उनकी, है ना? तो व्यवस्था में जो पड़ जाता है ना ज्यादा, तो शास्त्र में रुचि कम हो जाती है, है ना? तो ऐसा है, तो कात्यायन ने कुछ नहीं कहा, तो मैत्रेय को दिए आधा भाग धन। मैत्रेय ने प्रश्न पूछा, भगवान एक प्रश्न पूछूं मैं? हाँ पूछो, आप तो चले जाएंगे, उसके बाद फिर किससे पूछूं मैं? भाई आप जो धन दे रहे हैं, ये धन से क्या मैं अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूं? ये आप निश्चय करके बताइए। तो धन से अमृतत्व को यदि खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं हम? याज्ञवल्क्य जी खड़े थे, बैठ गए, है ना? और वो चाहते थे दीदी, ऐसा प्रश्न पूछे, है ना? गुरु चाहता है देखो हमेशा, जो शिष्य अच्छा अच्छा प्रश्न पूछे, आध्यात्मिक के विषय में प्रश्न पूछे, गुरु हमेशा चाहता है ना? तो याज्ञवल्क्य भी चाहते थे कि ऐसा प्रश्न पूछे जिससे कि मैं कुछ दे करके जाऊं, और जानते थे ये तो कात्यायन की कोई रुचि है ही नहीं इसमें, ये तो कोई पूछेगी नहीं। तो मैत्रेय ने जब पूछा कि धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त कर सकती हूं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा, इसकी आशा मत करो तुम, अमृतत्वम तो नाशास्ति वित्तेन, ये उत्तर दिया भाई। अमृतत्व की प्राप्ति तो बहुत दूर है, आशा भी नहीं करनी चाहिए, है ना? आशा करना भी मूर्खता है, है ना? तब मित्र ने कहा, फिर आप धन रखिए अपने पास, जिस धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती हूं, आप ऐसे धन को क्यों दे रहे हैं, है ना? ये नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुरियम, जिस धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती हूं, आप ऐसा धन को क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा धन दीजिए कि जिस धन से वास्तविक अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। तब उन्होंने उपदेश किया मैत्री ब्राह्मण में, बृहदारण्यक में। इस बार यहां पर भी देखिए, नचिकेता को कितना प्रलोभन दिया बताओ, है? धन संपत्ति राज्य सब कुछ, फिर भी नचिकेता ने कहा ये सब अपने पास रखिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास रहे तो शोभा आएगी, हमारे पास कोई शोभा नहीं आएगी, है ना? तो ये जितने भी आप धन संपत्ति दे रहे हैं, ये धन संपत्ति क्या करेगी, है ना? ये अपनी अपनी इंद्रियों को ये जीर्ण करेगी, है ना? इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये अनुभूत है। इसी प्रकार व्यवहार के समय यदि ऐसी भावना करेंगे, ये तो सारे की सारी संपत्तियां ये केवल साधन है, साधन साधन बस, शरीर निर्वाह के लिए परमात्मा का भजन के लिए साधन मात्रा, ये सब कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, ये मूर्खता है, है ना, इसलिए आपको पहले से बता दिया। अंदर का ज्ञान यदि गलत है तो बाहर का पदार्थ विक्षेप का हेतु होता है, अधीरता का हेतु होता है, विक्षेप करेगा। और बाहर का या अंदर का ज्ञान यदि सही है ना, ये सारा का सारा ये साधन है, साध्य नहीं है। हमको तो अमृतत्व को प्राप्ति चाहिए, बाहर पदार्थ की प्राप्ति नहीं चाहिए। ऐसी अमृतत्व की तीव्र इच्छा हो, मनोराज्य भी नहीं होगा भजन करते समय, ना मन निद्रा में जाएगा। इसलिए तो व्यवहार की अवस्था में, बाह्य अवस्था में तो अनुकूलता को भी देखिए, प्रतिकूलता को भी देखिए, दोनों को देखना है, किसी का एक पक्ष नहीं लेना है। देखो ये जो अंदर की यात्रा है ना, ये परमात्मा का दर्शन के लिए अंदर की यात्रा चल रही है। अंदर की यात्रा में अच्छी अच्छी अनुकूल परिस्थितियां आएगी, ये देवता लोग देने वाले हैं सब देवता लोग। तो हिमालय में आप जाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाएंगे, घाटी को यदि पार करना हो तो घाटी में बढ़िया बढ़िया दृश्य आता है। नाम सुने फूलों की घाटी है ना, हाँ ऐसी घाटी बहुत है वहां पर हिमालय में। आपको घाटी पार करना है तो घाटी पार करते समय तो कभी कभी मन करता है थोड़ा बैठ जाऊं यहां पर, देख लूं थोड़ा सा। और बैठ गए वहां पर थोड़ा सा, तो उसमें छोटे छोटे फूल होते हैं, पुष्प होते हैं घाटी में, है ना। और पुष्प की जो सुगंधी है ना, सुगंधी सुगंधी नशीली होती है, हाँ। और थोड़ा सा बैठ करके विश्राम किए तो ऐसी नशा चढ़ेगी, तो विश्राम ही करते रहेंगे आप। और एक बार लेट गए तो रात में लेटते ही रह जाएंगे आप, बर्फ पड़ जाएगी, सुबह राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना भाई, हाँ। ये भी तो घाटी और क्या है, ये अंदर की यात्रा के समय बड़ी बड़ी घाटी आएगी, इसमें अच्छे अच्छे पुष्प आएंगे, पुष्प आएंगे, ये मान पद प्रतिष्ठा, ये सम्मान स्तुति ये सब आएगी। देखो प्रतिकूल भी आएगी, ये भी आएगी। आप पद प्रतिष्ठा मिल गई, स्तुति कर कोई, है ना, और यही सब कुछ है जीवन का, ऐसा मान गए तब तो इसी में ही रह जाएंगे, बस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाहर जो है व्यवहार काल में आपको धीर बनकर रहना होगा, और भजन के समय साधन के समय अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा को आप तीव्र करिए, तब क्या होगा, कहते हैं कि प्रत्येक आत्मानम इच्छत, प्रत्येक आत्मा का दर्शन हो जाएगा, है ना। मन में एकाग्रता भी आएगी, मन में जो है सूक्ष्मता भी आएगी, और ज्ञान की योग्यता आएगी। ऐसी ज्ञान की योग्यता के बिना यदि श्रवण करते वेदांत का, तो परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान तो हो सकता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है, है ना। तो ये यहां पर प्रतिबंधक को बता दिया, प्रतिबंधक है बहिर्मुखता, और बहिर्मुखता होने को, बहिर्मुखता को दूर करने के लिए तीन साधन बता दिया। एक तो धीर होना होगा, और दूसरा आवृत चक्षु, और तीसरा है अमृतत्व इच्छा, अमृतत्व प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो। अच्छा, तो ये जो दृष्टा है, दृष्टा का स्वरूप यह प्रत्येक आत्मा है, तो इस आत्मा के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए, भाई दृष्टा को आत्मा क्यों कहते हैं, वे आत्मा के स्वरूप की पहचान करानी है, फिर इसको आत्मा क्यों कहा जाता है दृष्टा को, साक्षी को। तो भगवान भाष्यकार यहां पर लिखते हैं, यत चाप्नोति यत आदत्ते यत चाप्ति विषयान यह यच्चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। ये देखो भाष्य में है, ये भगवान भाष्यकार लिखे हैं, कहते हैं जो सारा संसार को व्याप्त करके रखा है ना। तो एक चलचित्र के पर्दे में चित्र कैसे भी हो, सभी चित्र को पर्दा जैसे व्याप्त करके रखता है, हो गया ना। इसी प्रकार से आत्मरूपी जो पर्दा है, ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति में होने वाले जितने भी चित्र है सबको व्याप्त करके रखा है, इसलिए आपनोति इति आत्मा। ये पहला अर्थ हो गया आपले व्याप्त, तो सबको व्याप्त करे इसका नाम क्या है? आत्मा। कोई बोलेगा माया भी तो व्याप्त करके रखा है संसार को, तो जो व्याप्त करता है उसी का नाम आत्मा, तो माया का भी आत्मा को भाई। ठीक है, संसार को माया व्याप्त करके रखा है, फिर भी ब्रह्म को व्याप्त कर सकती है ना? नहीं, माया को लेकर के आत्मा जीवात्मा है, हो गया कि नहीं? लेकिन आत्मा को व्याप्त नहीं कर सकती माया। परिछिन्न पदार्थ अपरिछिन्न को व्याप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा तो व्यापक है, अपरिछिन्न है, कण कण में व्याप्त है। संसार में माया व्याप्त होने पर भी परमात्मा में माया व्याप्त नहीं है, हो गया ना। इसलिए परमात्मा सबको व्याप्त करके रखा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? आत्मा। आपनोति इति आत्मा, है ना। तो उत्पन्न कर दिया और स्थिति काल में सबको व्याप्त करता है, ये हो गया परमात्मा भी, है। और जब संहार का समय आ जाता है अपने में समझ लेता है। इसलिए दूसरा अर्थ किए भगवान भाष्यकार आदत्ते इति आत्मा। ये देखो, सबको संहार काल में जो अपने में समट लेता है, ये न जाता न जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विसन्ति, परमात्मा में लय है। तो संहार काल में जो लय कर लिया, स्थिति काल में जो सबको व्याप्त किया, दो अर्थ हो गए ना भी। स्थिति काल में अब प्रकाशित भी जो करता है सबको, उसी को भी आत्मा कहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, जो सत्ता दे रहा है वो अलग है, सत्ता देने वाला अलग है और प्रकाश देने वाला अलग है, ऐसा नहीं है। समझ में ना? सर्प को जो ही सत्ता देता है, सर्प को प्रकाशित भी वही करता है, हो गया ना। विचार कर लो भाई, सर्प को सत्ता रस्सी देती है कि आत्मा देती है? कौन देती है, हैं? तो फिर सत्ता देने वाला फिर अलग हो गया और प्रकाशित करने वाला अलग हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। इसका विचार करेंगे, जो ही सत्ता रस्सी को देता है, जो ही आत्मा रस्सी को सत्ता देता है, वही आत्मा सर्पों को भी देता है। ऐसा जो मैं पहले आपको बता दिया, जो ही पर्दा वृक्ष को सत्ता देता है, वही पर्दा वृक्ष में रहने वाला पत्ते को भी देता है, हो गया कि नहीं। जो ही आत्मा स्वप्न का अधिष्ठान है, वही आत्मा जागृत का भी अधिष्ठान है, हो गया। तो एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है, और एक ही चेतन है वेदांत में, है ना। तो जिसने सत्ता दिया स्थिति काल में, स्थिति काल में वही प्रकाशित भी करता है। इसलिए तीसरा अर्थ यहां पर करते हैं कि यच्च अति विषयान, यह स्थिति काल में समस्त पदार्थ को जो अति मतलब प्रकाशित करता है, देखता है, रूप को भी देखता है, रस को देखता है। और यदि मिल गए तब तो विक्षेप हो गया, किसके साथ? मन बुद्धि के साथ। मन बुद्धि के साथ मिल गए तो रूप का संस्कार आएगा, अनुकूल रूप यदि हो तो श्रवण बुद्धि हो जाएगी, प्रतिकूल यदि रूप हो और श्रवण बुद्धि हुई, वही मनोराज्य फिर करा लेगा। देखो, भगवान का भजन नहीं हो सकता उससे। ये तीसरा अर्थ हो गया। अब तो समय हो गया, तो आगे का विचार कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।